ये बड़े शक्ति संपन्न हुए हैं, चलो अपने आवे उनसे मिले तो सही। साथ में प्रहस्त आदि और राक्षसों को ले लिया कि चलो अपने दोहितों से जाकर मिलते हैं। तो गए जहां रावण थे, रावण के उसकी बेटी थी, वहां जाकर मिले, रावण से भी मिले। रावण से मिलकर के सुमाली ने कहा, नाना जी ने कहा, देखो सुमाली और माल्यवान ये दोनों आपस में भाई थे, इसलिए सुमाली और माल्यवान, इनमें माल्यवान को भी रावण नाना जी बोलता था। तो रावण के पास जब ये नाना सुमाली आए तो सुमाली ने कहा कि देखो बेटा, हम जो चाहते थे वो तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। हम यही चाहते थे कि हमारे दोहिते बहुत बड़े बलवान शूरवीर बने। अब देखो एक बात है, ये लंका नगरी है, ये राक्षसों के लिए बनाई थी, और बेटा तुमको इतने अच्छे अच्छे वरदान मिल गए, तो अब तुम ऐसा करो कि कुबेर को वहां से मार भगाओ और राक्षसों को जाकर के वहां पर बसाओ। हम तो विष्णु के भय से लंका को छोड़कर चले गए थे, हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं। ये क्या है, कुबेर है कुबेर, छोड़ो ना कुबेर को, निकालो यहां से और जाकर के अपने लोग वहां रहे। खूब अच्छी तरह से कहा कि पहले तो जाकर उसको शांति से समझाओ, शांति से नहीं समझता है तो फिर बले ना भी, फिर अपना बल दिखाओ, कुछ न कुछ उसको करो, ये लंका खाली करा करके राक्षसों के लिए ले हो तुम। रावण ने कहा, नार्यस्य एवं प्रभाषितुम, नाना जी हमारे घर में कलह मत कराइए, कुबेर कोई और नहीं है, कुबेर मेरे बड़े भाई हैं और वो वित्तेश हैं, सारे संसार के धनाध्यक्ष हैं, वो हमारे से बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, उनके पास जाकर के हम ऐसा कभी कलह की बात नहीं करेंगे। क्या कोई छोटा भाई बड़े भाई के पास जाकर कलह की बात करेगा, उसकी शोभा है ये? हम पौलस्त्य के पुत्र हैं, हम पुलस्त्य वंश में पैदा हुए हैं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तब प्रहस्त ने कहा कि बेटा रावण, ये क्या बात करते हो, तुमको अभी राजनीति का ज्ञान नहीं है, नाधीता राज धर्मास्ते, और न नीति शास्त्र का ज्ञान किया है। ये शूरवीरता जो होती है, ये शूरवीरता क्यों प्राप्त करता है आदमी? जहां शूरवीरता होती है वहां पर भाई बंधु के नाते नहीं चलते हैं, वहां पर तो भुजबल का नाता चलता है। तुम कुबेर से बड़े भारी शूरवीर हो, अरे तुम अपने भाइयों की बात करते हो, ये कश्यप जी रहे, कश्यप जी के बेटा है देवता और कश्यप जी के बेटा ही असुर, देवता और असुर हुआ, कितना संग्राम होता है, रात दिन लड़ते फिरते रहते हैं, परस्परम अयुध्यंत त्यक्त्वा सौहृदम आयुधेहि, शस्त्रों से लड़ते हैं, कितने बुरे लगते हैं, सारी सृष्टि में इनकी तुई तुई होती है, तब ये बेशर्मी से लड़ते रहते हैं। तुम्हारे साथ तो कोई सेना से तो लड़ना नहीं है, कुबेर को वहां से भगाना है, इसलिए तुमको बैर करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, और वो आपका हक है, वो आपका हक लगता है, इसलिए आप जाकर के हक पूर्वक उसको लीजिए। ऐसे बार 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 उसको समझाया गया, तो वहां पर वो रावण गया और प्रहस्त को ही दूत बना करके भेज दिया कि आप ही दूत बन करके जाओ। कुबेर को कहा, कुबेर ने कहा कि भाई मेरे भाई रहेंगे क्या, चलो हमें कलह नहीं करना है, मेरे छोटे भाई है तो छोटे भाई रहो चाहे हम रहो, हमें कलह तो करना नहीं, बड़े प्रेम से तुम लोग रहो। तो फिर रावण जाकर के वहां रहने लग गया, रावण के साथ साथ में और राक्षस थे, वो सब राक्षस आकर के लंका में रहने लग गए। इधर वो कुबेर अपने पिताजी के पास गया, पिताजी आपने तो मुझे वहां रहने के लिए कहा था, लेकिन छोटे भाई रावण ने आकर के वहां पर कब्जा कर लिया। पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, कुछ भी हो, कितना ही कोई धन चला जाए, कितना ही कोई मान चला जाए, लड़ाई मत करो, कलह मत करो, और देखो जो है कुबेर, तुम तो बड़े हो ना, तुम संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो, और जाकर के, और तुम जो है उत्तर की तरफ कैलाश पर्वत के वहां जाकर भगवान शंकर की सेवा में रहो, और वहां विश्वकर्मा तुम्हारे लिए अलका नगरी बना देंगे, तुम अलकापुरी में रहो, वह भी कोई लंका से कम नहीं है। तब जो है वो जाकर के अलकापुरी में रहने लग गया, भगवान शंकर की सेवा में रहने लग गया। रावण है वो लंका में रहने लग गया। अब रावण ने वहां लंका में जाकर अपना अभिषेक करवा लिया और वो राक्षसों का राजा बन गया। अपनी बहन शूर्पनखा थी उसका विवाह विद्युज्जिम्म नाम के दैत्य के साथ कर दिया। स्वयं रावण का विवाह मयासुर की पुत्री थी मंदोदरी उसके साथ विवाह हुआ और उस मयासुर ने एक बहुत अच्छी विलक्षण शक्ति भी अमोघ शक्ति थी वो रावण को दे दी कि इस शक्ति का जब प्रयोग करोगे तो ये शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, ये दहेज में दे दिया। ऐसे ही विरोचन बलि का बेटा था, उसका बलि का पिता था विरोचन, प्रहलाद का विरोचन, विरोचन का बलि। तो विरोचन का विरोचन की दोहित्री थी वृत्रत ज्वाला, उस दोहित्री के साथ में कुंभकर्ण का विवाह हुआ और शैलूष नाम का गंधर्व था उसकी पुत्री थी शर्मा, उसका विवाह विभीषण के साथ हुआ। वो भी बड़ी धर्मज्ञा थी, धर्म को जानने वाली थी, बहुत शुभ लक्षणों से संपन्न थी। तो शर्मा का विवाह विभीषण के साथ हो गया, ऐसे सब भाइयों का और बहनों का विवाह हो गया। अब मंदोदरी के मेघनाद पैदा हुआ। मेघनाद उसका नाम इसलिए रहा कि जब वो पैदा हुआ तो पैदा होते ही बदलों के समान गर्जना करने लगा, तब इसका नाम मेघनाद हो गया। लोग मेघनाथ बोलते हैं, मेघनाथ नाथ नहीं है, मेघनाद है, थे नहीं है, द है, तय थे द तीसरा अक्षर। तो मेघनादम अजीजनत, मेघनाद को जन्म दिया। कुंभकर्ण को तो नींद बहुत आती थी, तब जब लंका के अंदर रावण का राज्य हो गया तो कुंभकर्ण ने कहा कि देखो महाराज, मुझे तो महल माली नहीं चाहिए, मुझे तो एक बहुत बड़ी गुफा चाहिए, एक विशाल पर्वताकार गुफा दे दीजिए और उस गुफा के अंदर हम आराम से रहे, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। तो एक लंबी चौड़ी सब सुविधाओं से संपन्न गुफा दे दी। उस गुफा के अंदर ऐसे ऐसे लताओं के भी, जहां उनकी बड़ी सुगंध आए फूलों की, उस वो उनको जगह दे दी। कुंभकर्ण जी वहां रहने लग गए। इस प्रकार से कुंभकर्ण जी है वहां रहने लगे। ब्राह्मणान ऋषि मुख्यांश देवदानव किन्नरान, इधर जो है ब्राह्मण है इन सबको, देवताओं को, किन्नरों को, दानवों को, इन सबको ये रावण जो है कुंभकर्ण के सो जाने पर खूब तंग करने लगा, परेशान करने लगा। कुबेर को पता चला कि लंका में रह करके ये लोग बड़े उपद्रव करते हैं, तो कुबेर ने एक बार वहां जाकर के रावण को खूब समझाया कि देखो रावण, धर्म करना चाहिए, मनुष्य के पास सबसे बड़ा बल धर्म का ही होता है। अधर्म मा कुरुष्व, अधर्म मत करो। दूतों से भी समझाया, औरों से भी समझाया उसको। रावण ने कहा अच्छा, हमको ही शिक्षा देने वाला आया। जाकर के उसने कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया, छीन करके अपने पास में रखा। कुबेर जी बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के सोचने लगे, अरे हमने तो इनको अच्छा ज्ञान दिया, इन्होंने हमारा पुष्पक विमान ही छीन लिया। तो शंकर भगवान से निवेदन किया, औरों से कहा देखो महाराज, हमारा पुष्पक विमान ले लिया। भगवान शंकर ने कहा पुष्पक विमान तुम्हारे पास आ जाएगा, पर एक बात याद रखो कि तुम्हारे इस निर्णय से तुमको जीवन में ये सीखना चाहिए कि जब तक कोई आदमी पूछे नहीं तब तक उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब आदमी को ज्ञान की गरज हो तभी ज्ञान देना चाहिए, बिना पूछे ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान का निरादर करेगा तो और उसको पाप लगेगा। अब जो है मेघनाद रावण है, रावण ने यमराज जी को, वरुण देवता को, स्वर्ग को और सबको जीत लिया। एक बार देवताओं के साथ युद्ध हुआ, उसमें स्वयं साक्षात इंद्र भी थे। इंद्र का और रावण का खूब युद्ध हुआ, अंत में इंद्र बलवान था, रावण को उठा करके कैद खाने में डाल दिया। मेघनाद को पता चला, तब मेघनाद ने जाकर के इंद्र के साथ में इतना विलक्षण युद्ध किया कि अपने पिता को तो छुड़ा लिया उसने और इंद्र को ला करके अपने लंका के अंदर कैद कर लिया। ब्रह्मा जी को पता चला कि देवताओं का राजा इंद्र है जो सृष्टि के अंदर बड़ा उपकारक है, उसको मेघनाद ने लंका में कैद कर लिया है। तब वह ब्रह्मा जी आए मेघनाद के पास, रावण के पास, और कहने लगे कि देखो रावण, हमने तुमको वरदान दिए हैं, हम मेघनाद को भी वरदान दे सकते हैं, इंद्र को किसी प्रकार से छोड़ना पड़ेगा। क्या सेब ठीक है, हम छोड़ देंगे, हम आपको, आप हमको वरदान दीजिए, ब्रह्मास्त्र दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। ब्रह्मा जी ने जो मांगा सो दे दिया। रावण ने कहा, देखो बेटा, हमने तो तपस्या करके वो वरदान प्राप्त नहीं किए जो तुमने अपने शूरवीरता से प्राप्त किए है। देखो ब्रह्मास्त्र के लिए तो हमने कभी ऐसा वरदान प्राप्त नहीं किया, तुम बड़े शूरवीर हो। ऐसे वो उस घमंड में आ गया, रावण घमंड में आ गया। उस घमंड में आकर के रावण एक बार कैलाश पर्वत पर गया, वह जाकर कैलाश पर्वत के नीचे उसको कैलाश पर्वत को यूं उठा लिया और रख दिया। तो नंदीश्वर थे, उन नंदीश्वर ने जो भगवान शंकर का सेवक था उसने शाप दिया कि बानरीर मानुषैश्चैव नाशं गच्छति कोपिनः, कि अरे जब ये बंदर और मनुष्य ये कोप करेंगे ना तो रावण तेरा विनाश हो जाएगा। इस प्रकार से उसने जो है साप दे दिया। उसने साप की कोई महिमा मानी नहीं, क्या होता है साप। उसने कैलाश पर्वत को रख दिया और घमंड में फिर चलता रहा। ऐसे करते करते एक बार सहस्राजुन था, वो नर्मदा में स्नान कर रहा था, तो वहां जाकर उसने अपने हजारों हाथों से पानी को रोका। सहस्रार्जुन ने वो पानी उल्टा चलने लगा तो रावण के शिविर में वो पानी आया। रावण जाकर सहस्रार्जुन से लड़ने लगा तो सहस्रार्जुन ने उसको पकड़ करके खूब तो मारा और कैद खाने में बंद कर दिया। तब पुलस्त्य ऋषि आए, उनके कहने से उसको छोड़ दिया। एक बार बाली था, वो दक्षिण समुद्र के किनारे जो है संध्या कर रहा था। संध्या करते हुए ये रावण वहां आया, वो लंका में जा रहा था, उत्तर की तरफ से आया और दक्षिण में जा रहा था। ए बानर, कौन हो तुम, ऐसे करके उनकी संध्या में बाधा डाली। तो बाली ने उसको उठा करके अपनी खाक में डाल दिया और संध्या करता रहा। धृतस्तेन व कक्षेण बालिना दशकंदर है, और फिर बाली आकाश में उड़ गया खूब ऊंचा और कहा कि बस अब मैं खाक खुली करता हूं, अब तू नीचे गिरेगा। अरे 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 भाई, बचाओ मेरे को, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ कोई बैर विरोध नहीं करूंगा, आज से हम तुम्हारे मित्र हो गए। तब बाली ने कहा, खबरदार है, आज से हमारे विपरीत कभी चलोगे नहीं। बाबा, सोमवार हम कान पकड़े, आपसे हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तेन सख्यम चकार से, उसने उसके साथ में मित्रता कर ली। ऐसे ऐसे रावण के बड़े प्रभाव थे। लक्ष्मण को मेघनाद ने मारा, नहीं, मेघनाद को लक्ष्मण ने जब मारा तब महाराज हम सोच गए, अब तो लंका एकदम आपके हाथ में, विभीषण के हाथ में आने वाली है। जब तक मेघनाद नहीं मरा, लक्ष्मण ने मेघनाद को नहीं मारा, तब तक हम लोगों के मन में बड़ा भय लग रहा था कि मेघनाद कैसे मरे। लेकिन लक्ष्मणेन महात्मना मेघनादश्च निहतः है, महात्मा लक्ष्मण ने इसको मारा, तब जाकर के सर्वत्र शांति मिली। आखिर महाराज, लक्ष्मण तो आप ही तो हैं, आपसे अलग कौन है। और वैसे तो महाराज, चराचर प्राणी आपसे कोई अलग है नहीं, रावण भी कोई आपसे अलग नहीं, मेघनाद भी आपसे अलग नहीं, क्योंकि जो संसार है वो आप ही तो हो। आप ही के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए, आपके मुख से अग्नि पैदा हुई, आपकी वाणी से जो है ये अग्नि पैदा हुई, आपके भुजाओं से लोकपाल पैदा हुए, आपके आंखों से सूर्य चंद्रमा पैदा हुए, आपके कानों से दिशा और विदिशा पैदा हुई, आपके नासिका से प्राण पैदा हुए, अश्विनी कुमार पैदा हुए, आपके कोख से ये समुद्र पैदा हुए और जो है आपके हड्डियों से पर्वत पैदा हुए, आपके केशों से ये जो है बालों से वृक्ष पैदा हुए और केश है इन केशों से ये बदल पैदा हुए। ये सब आप ही का तो रूप है, त्वम विश्व रूप है, आप ही तो विश्व के रूप में आप ही आप हो। व्यवहार दृष्टि में हम रावण राम और लक्ष्मण ये अलग अलग बोलते हैं, ये राम है, ये रावण है, ये लक्ष्मण है, ये मेघनाद है, ये कुंभकर्ण है, ये विभीषण है, ये तो व्यवहार काल में बोलते हैं, वास्तव में सब कुछ आप हो। त्वया सृष्टम इदम सर्वम, सब आपने बनाया है, सब आप ही बने हो। जैसे क्षीर मध्य गतम सर्पी ही, दूध के अंदर जैसे घी रहता है, ऐसे ही यथा व्याप्याखिलम पय है, आप भी महाराज सारे संसार में व्यापक हुए वे बैठे हुए हो। आपके कारण से ही ये संसार दिखता है। न तुम तेनाव भाष से, संसार से आपका ज्ञान नहीं होता, आपके कारण से संसार का ज्ञान होता है। देखो इस वस्तु का ज्ञान नेत्र से होता है, लेकिन ये वस्तु है ये नेत्र का ज्ञान नहीं करा सकती, लेकिन नेत्र है वो इस वस्तु का ज्ञान करता है। ऐसे ही आपके कारण से संसार का ज्ञान, संसार की प्रतीति होती है। संसार आपको क्या बता सकते, संसार तो स्वयं जड़ है, परंतु आपका ज्ञान ऐसे ही नहीं होता है। अदत वस्तु का निषेध करते 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 ही आपका ज्ञान होता है। जो अनात्म तत्व है उसका तो बाद करें और आत्म तत्व को प्राप्त करें, तब आपका ज्ञान होता है। ऐसे महाराज आपने हमसे पूछा, वो हमने आपको बताया, आप किस दिशा में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, किस काल में रहते हैं, ये बात आपके अंदर लागू ही नहीं होती। देखो आजकल लोग यही पूछते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं कि आपके अंदर ये चीज लागू नहीं होती कि आप कहाँ रहते हैं। कहाँ बताएं आपको, सब जगह रहने वाले को कहाँ बताएं, कहाँ बताएं कि आप यहाँ रहते हो। यहाँ रहते हो कहते ही यहाँ नहीं रहते हो सिद्ध होता है। हमारे संतों ने, महात्माओं ने ये नहीं कहा कि भगवान मूर्ति में रहते हैं, ये नहीं कहा है। मूर्ति में भगवान है उपासना चालू कर दी, ये तो कहा है और ये ठीक भी है, लेकिन मूर्ति में भगवान है और जगह नहीं है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ आएगा। मूर्ति में भगवान है और जगह नहीं है, भगवान मूर्ति में भी है और जगह भी है। मूर्ति की उपासना करने वाला कम से कम एक जगह चालू किया, सब जगह बोलते रहो, उससे कोई लाभ नहीं होता जब तक उसका अनुभव नहीं हो जाता। आप चिन्मात्र हो, आपके अंदर कोई संचलन नहीं होता, आप सर्वज्ञ हो। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। राम जी ने कहा, सुनो ऋषियों एक बात तो बताओ। क्या महाराज? ये बाली और सुग्रीव क्या है? बाली और सुग्रीव का जन्म हम सुनना चाहते हैं। बाली सुग्रीव की उत्पत्ति कैसे हुई? हमने ऐसा तो किसी से सुना था कि बाली तो सूर्य से पैदा हुआ है और बाली है ये तो इंद्र से पैदा हुआ है और सुग्रीव है ये सूर्य से पैदा हुआ है, ऐसा तो हमने सुना है। लेकिन पूरी बात सुनाओ। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, महाराज इनकी उत्पत्ति भी बड़ी विचित्र है। एक बार की बात है कि सारी सृष्टि का जब निर्माण हो चुका तो ब्रह्मा जी आपकी कृपा के अंदर डूबे हुए बैठे थे। कहते देखो मैं एक शूद्र जीव और भगवान ने कृपा करके कहां का कहां मुझे ब्रह्मा पद दिया। ऐसे ब्रह्मा जी अपने सुमेरु पर्वत के ऊपर, उनका कार्यालय है, ऑफिस है, वहां पर बैठे बैठे वो सोच रहे थे आपकी कृपा में, तो कृपा में डूबे ना तो आनंद के आंसू बहे। जब वो आनंद के आंसू बहने लगे तो वो आंसुओं का जल इकट्ठा हो गया और फिर जो है ब्रह्मा जी ने देखा कि को कई देर तक विचार किया। पहले तो हाथ में हथेली में आंसू लिए वो, फिर जाने क्या सोचा, उन्होंने उस आंसुओं को यूं डाल दिया, तो ज्यों ही उनको डाला वो आंसू ही बंदर बन गया। उस बंदर का नाम रहा रिक्षराज। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम यहीं रहना हो, इधर उधर फुदकना नहीं, तुम यहीं रहना, कितना अच्छा ये हमारा स्थान है, कितना विस्तृत है, यहीं रहना, तुम कहीं मत जाना। तो ऋक्षराज थे वो ब्रह्मा जी के वहां सात कौंभी नाम की जो जो है उनकी रहने की जगह है, माने काम करने की जगह है सुमेरु पर्वत पर, वहां पर वो ऋक्षराज रहने लगे। ऐसे करते करते ऋक्षराज को रहते बहुत सा समय हुआ। एक दिन वो फल फूल खाने के लिए बंदर ही तो ठहरे, फुदकते थोड़े आगे चले गए। आगे चले गए तो वहां पर एक तालाब देखा, वो वृक्ष पर चढ़ करके और यूं तालाब में झांकने लगे तो वहां उनको अपने ही जैसा बंदर की परिछाई दिखाई दी। ऋक्षराज ने देखा कि ये एक बंदर और कहां से आ गया, तो वो उस पानी के अंदर कूद गए। पानी में कूदे और जो ही डुबकी लगाई, पानी पिया और वो बाहर आए, क्यों ही जाने क्या बात थी, कोई ब्रह्मा जी का ही आंसू होने से क्या पता क्या हुआ, एकदम बहुत सुंदर स्त्री बन गए वो। बंदर और पानी में डूबे, डूबके छलांग लगे, बाहर सर्वांग सुंदर स्त्री हो गई। अब क्या बताएं, अपश्यत सुंदरीम रामाम आत्मानम विस्मयम गतः है। अब वो ऋक्षराज बंदर अपने को बहुत सुंदर स्त्री देखकर स्वयं आश्चर्य में लगे, ये क्या हुआ है, इस पानी में कूदने से ऐसा क्या हुआ। तो उधर क्या हुआ कि वो ब्रह्मा जी से मिलने के लिए इंद्र आए और इंद्र ने उस स्त्री को देखा, तो उस स्त्री को देखने पर इंद्र से ये बाली पैदा हुआ, इंद्र के ये बाली पैदा हुआ। ऐसे ही ब्रह्मा जी के पास एक बार सूर्य आए, सूर्य आए ब्रह्मा जी से मिले तो उन्होंने भी उस सुंदर स्त्री को देखा तो उससे ये सुग्रीव हुआ, सुग्रीव। तो सूर्य से सुग्रीव और इंद्र से ये बाली ऐसे पैदा हुए। अब वो जो है सुंदर स्त्री सुग्रीव और बाली को लिए लिए वो ब्रह्मलोक में वहां पर बैठी थी, वहीं फल फूल लाती, दोनों बच्चों का पालन करने लगी। एक दिन जो है वो ऋक्षराज सुंदर स्त्री बनी हुई ब्रह्मा जी के सामने रोती भी लगती, कहने लगी महाराज अब इन बच्चों को कहां रखूं, कहां ये इनका पालन पोषण होगा, मुझे कोई जगह बता दो, यहां तो अब महाराज बंदरों की रहने की जगह कैसे बनेगी। ऐसे करके वो कहने लगी, तब कहा कि देखो भाई हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढे हुए हैं, विश्वकर्मा ने बंदरों के लिए जगह बनाई है, वो है किष्किंधा, वहां पर जाकर तुम रहो, ऐसा सुंदर जंगल है, हर ऋतु के हर फल वहां पर खाने को मिलते हैं, देवता लोग भी वहां पर जाकर के आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसी वो सुरक्षित जगह है, वहां पर जाओ तुम तो बन जाना राजा, और ये दोनों दोनों जो तुम्हारे पुत्र हैं इनके अधीन सारे बंदर जाति के लोग रहेंगे, किष्किंधा के बाहर बहुत बंदर हैं, सब बंदरों की राजधानी तुम्हारी किष्किंधा ही रहेगी। सर्वे ते ऋक्षराजस्य भविष्यन् भविष्यन्ति वशेनुगा, ये ऋक्षराज के वश में हो जाएंगे, तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और देखो हम तुमको एक दूत के साथ में भेजते हैं। अपने दूत को बुलाया और दूत को बुला के कहा देखो भाई हमारी ओर से तुम इनका ऋक्षराज का वहां राज्याभिषेक कर देना और वहां पर सब बंदरों को घोषणा करके सूचना कर देना कि भाई अब आज से ऋक्षराज है वो तुम्हारे यहाँ के राजा है और सदा तुम इनकी जो है इनकी आज्ञा का पालन करना और किष्किंधा में रहना चाहो किष्किंधा में रहना। ऐसे करके बंदरों का किष्किंधा के साथ प्रेम जो है संबंध करा दिया। और देखो ऋक्षराज हम तुमको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी देते हैं, जब भगवान नारायण दशरथ जी के कुल में पैदा होंगे, रघुकुल में पैदा होंगे, अवतार लेंगे, तब तुमको अपने सारे वंश के साथ इनकी सहायता करनी पड़ेगी। कहा कि महाराज भगवान की सहायता के लिए तो हम रात दिन तैयार हैं। अब वो जो है बाली और सुग्रीव को लेकर के वहां पहुंचे तो वो खुद बंदर हो गया, वहां जाते वो स्त्री नहीं रहा, बंदर हो गया, बंदर होकर के वो वहां पर रहने लगे और तब से किष्किंधा बंदरों का स्थान बन गया। और जब ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की, इन बंदरों को वहां पर देखा गया, तब देवताओं ने देखा कि अपने को भी किष्किंधा चलना चाहिए, तब वे सब के सब मिलकर के देवता लोग वगैरह जो है इन बंदरों के साथ मिलकर के आपकी सहायता करने लगे। आप तो महाराज अखंड आनंद रूप हैं, आपने तो बंदरों की क्या सहायता ली, बंदरों को गौरव प्रदान किया, देवताओं को गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार से बाली और सुग्रीव की हमने आपको ये कथा सुनाई है। हम एक दूसरा ही निवेदन करना चाहते थे महाराज, वो ये बात है कि राम, हे राम, हमारी बात को आप सुनिएगा कि सीता का रावण ने हरण क्यों किया, और हरण किया तो उसको अशोक वाटिका में क्यों रखा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये रावण कोई त्रेता युग में नहीं हुआ था महाराज, ये सतयुग का रावण था। एक बार की बात है कि जंगल के अंदर ये घूम रहा था, अकस्मात उनको सनत कुमार जी के दर्शन हुए, तो रावण ने जाकर सनत कुमार जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि ऋषि मुनियों का, महात्माओं का बहुत आदर करता था। आदर करते हुए उसने कहा कि हे ऋषिवर, ये देवता लोग बार बार आंख बंद करके हाथ जोड़ करके किसकी प्रार्थना करते हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं ये यहाँ जंगल में रहने वाले, ये भी नेत्र बंद करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस संसार में इतना बड़ा कौन है कि जिसकी इतनी आराधना की जाती है। और देवाश्रयम समाश्रित्य, और ये देवताओं की बात सुनते हैं कि सबको न जाने किसका बल मिलता है कि सबको पराजित कर देते हैं, देवताओं में इतनी ताकत कहां से आई है, ऋषि मुनियों में इतनी ताकत कहां से आई है, हे महाराज अपना सेवक समझ करके मुझे इसका समाधान करवाइए। तब उस रावण के हृदय की बात समझ करके और सनत कुमार जी कहने लगे, रावण देखो बेटा, हम तुमको बहुत अच्छी बात सुनाएंगे, इस संसार के कर्ता धर्ता भोक्ता ये वो है जिनका कभी जन्म वगैरह होता ही नहीं है, जिनके कोई माँ नहीं, जिनका कोई बाप नहीं, जिनके कोई कुछ नहीं, सब संबंधों से ऊपर हुई सर्वशक्तिमान, उनका नाम है नारायण, उनका नाम है हरि, अब सबका बल उसी से ही मिलता है, इसलिए सब लोग उनसे बल की आकांक्षा करते हैं। ये जो ब्रह्मा जी है, ये संसार को बनाने वाले, ये भी उनके नाभि कमल से पैदा हुए हैं, और उनके बताए हुए निर्देश के अनुसार ही वे संसार बनाते हैं। ये देवता भी उन्हीं से ही पैदा हुए हैं, उन्हीं से ही सब ऋषि मुनि, सब ये सारा संसार उन्हीं से ही पैदा हुआ है। योगी लोग ध्यान योग के द्वारा उन्हीं के ही पीछे पीछे चलते रहते हैं, उन्हीं का ही जाप करते हैं। तब कहा, महाराज ये दैत्य दानव राक्षस हैं, इनको ये विष्णु मारता है, वो विष्णु नारायण सब एक ही, हाँ वो एक ही है, तो जब देव देवता वगैरह मारते हैं तो वो देवताओं से मरने वाले आदमी कहाँ जाते हैं और विष्णु से मरने वाले आदमी कहाँ जाते हैं? देखो भाई, जो देवताओं से मरेगा ना वो तो रावण स्वर्ग में जाएगा, राक्षसों से मारा जाएगा वो नरक में जाएगा, और विष्णु के द्वारा जो मारा जाएगा वो तो विष्णु के धाम में वैकुंठ को जाएगा। अब वो सोचता है मनी मन में, विष्णु से मारा हुआ वैकुंठ में जाएगा, ये मनी में सोचता है। तो ऐसे वो मन में सोचता है, कभी मैं तो वैकुंठ में जाने के लिए विष्णु के साथ युद्ध ही कर सकता हूं, योत्स्यम हरिणा सार्धम, तब तो विष्णु के साथ युद्ध किया जाए, ऐसा मन में विचार किया। त्रिकालदर्शी महात्मा सनत कुमार रावण के मन की बात ताड़ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, हर काम में समय लगता है, रावण तू सोचता है कि विष्णु से मरने पर स्वर्ग, ये वैकुंठ मिलता है, तो तू सोचता है कि मैं अभी जाऊं और विष्णु से लड़ दूं, ऐसे मत करना, हम तुमको इसका एक उपाय बताते हैं, किंचित कालम प्रतीक्षस्व, अभी तो तुमने हमारी बात सुनी है, सुनी हुई बात को तत्काल फल में देखना चाहो ना, ऐसे नहीं होगा, इस बात में समय लगेगा, लेकिन तेरे मन की बात जरूर पूरी हो जाएगी। कहा महाराज कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी? देखो बेटा, सबसे पहले ये दृश्यमान जगत है, इसमें भगवान को देखना चालू करोगे तब आपको वैकुंठवासी भगवान के साथ तुम्हारा संबंध बनेगा। जगत में तो तुम परमात्मा देखते नहीं, और सीधे ही परमात्मा देखना चाहोगे, कैसे होगा? लोग कहते हैं हम इतना नाम जप करते हैं, हमारा इतनी साधना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भगवान तो हमको नहीं मिले। तो भाई भगवान हमको नहीं मिले, इसका कारण क्या है कि हम माता पिता में भगवत बुद्धि नहीं करते, पति पुत्रादि में भगवत बुद्धि नहीं करते, पारिवारिक संबंध है इनमें तो हम भगवत बुद्धि रखते नहीं, वस्तु व्यक्ति प्राणी आदि में भगवत बुद्धि करते नहीं, और ऐसे ही हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे? नहीं होगा। इसलिए स्थावर जंगम नदी नद इन सब के अंदर एक परमात्मा व्यापक है, इस बात को तुम साधना के द्वारा समझो, विचार के द्वारा समझो। ये जगत उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है, ये तो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए ना। इस जिज्ञासा के बिना ही तुम देखो हम भगवान के साथ बैर कर लेंगे और बैकुंठ मिल जाएगा, ऐसे सीधा नहीं मिलेगा। ये पृथ्वी किसके आधार पर है, ये सूर्य किसने बनाया है, चंद्रमा किसने बनाया है? देखो कर्म है तो कोई न कोई करता तो होना ही चाहिए ना। ये मकान है, इसको देखे मकान गया भाई, ये बहुत सुंदर आदमी, ये बहुत सुंदर मकान बनाया, कैसा कैसा आपस में दिया हुआ, बहुत सुंदर है, इसका मतलब कोई न कोई बनाने वाला है। और वो जिंदा है कि मर गया है, कारीगर है कि नहीं है, अपने को किसी को जिन्हें को पता होगा तो होगा, प्राय करके पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि कारीगर जरूर है, कारीगर के बिना ये कारीगरी कहां से आती। ऐसे ही जगत में हम लोगों को असंख्य तारे दिखते हैं, हमको सूर्य चंद्रमा दिखता है, आकाश मंडल दिखता है, वायु दिखती है, जल दिखता है, समुद्र दिखते हैं, किसने बनाया तो है ना, बिना बनाए तो हुए नहीं, स्वयं विष्णु सनातन है। दूसरी बात है कि विधान है तो विधाता है, कर्म है तो करता है, और विधान है तो विधाता है। विधान सबके जीवन में आता है, अपने जीवन में एक विधान बना हुआ है, प्रतिकूलता भी आती है और अनुकूलता भी आती है, ऐसे थोड़ी आती, वो विधान पूर्वक आती है। अतएव इसका कोई न कोई विधान का रचयिता भी है, वो रचयिता है करोति अव्ययात्मा स्वयं विष्णु, उसी का नाम विष्णु है। उसने खेल खेल में संसार बनाया, और बना करके उससे अलग भी है और इसके अंदर भी है, यही उसकी विशेषता है। अलग तो कैसा है कि संसार का नाश हो जाएगा, उसका नाश नहीं होगा, इस दृष्टि से वो अलग है। और उसके अंदर समाया हुआ कैसा है कि उसके बिना इसकी स्थिति संभव नहीं है, स्थिति केवल उसी की है। द्रष्टुम न शक्यते कैश्चित, बिना आराधना के उसकी उसको जान नहीं सकते हो। यस्य प्रसादम कुरुते, जिसके ऊपर साधना करते करते वो कृपा करता है ना, जो साधना करने वाला है उसके ऊपर जब उसकी कृपा होती है तभी उसका ज्ञान होता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए भाई तद भक्तैस् तद्गत प्राणैस् तच्चित्तैः भूत कल्मषैः शक्यते भगवान विष्णु, उन्हीं से ही भगवान विष्णु का ज्ञान होता है जो उनकी भक्ति करते हैं। अथवा द्रष्टुम इच्छाते, अच्छा तेरे अंदर ऐसी भक्ति है नहीं, तू सोचता है कैसे न कैसे मैं भगवान से लड़ूं भिड़ूं, तो कहां जाएगा तू, वैकुंठ में जा सकता नहीं। और प्राणी पदार्थ में निहित व्याप्त जो भगवान है उसकी साधना तू कह रहा है मेरे से होती नहीं। अब यदि तेरे को फिर भी भगवान चाहिए तो हम एक उपाय बताते हैं, थोड़ी प्रतीक्षा कर। त्रेतायुग के अंदर भगवान देवताओं के हित के लिए, मनुष्यों के हित के लिए इक्ष्वाकु वंश में अवतार लेंगे, वे दशरथ जी के बेटा बनेंगे, और दशरथ जी के बेटा बनकर के खूब जो है बलवान होकर के, और वे जो है यहाँ अवतार लेंगे, फिर उनका विवाह होगा, फिर जो है माता पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में जाएंगे। दंडकारण्य में जिस समय अपने भारिया और भाई के साथ जाएं, उस समय में तुम जो है विचरिष्यति धर्म, उस समय में तुम किसी प्रकार से राम को देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो और उनके साथ युद्ध कर सकते हो। विचरिष्यति धर्मात्मा जगन मात्रा स्वमाया, वो सीता है, वो जगत की माता है, लक्ष्मी है, और उस समय में वो माया के रूप में वहां पर विचरण करेगी। ये हमने तुमको ठीक ढंग से बता दिया है। यदि अभी भी तुम भगवान को प्राप्त करना चाहो तो भक्ति भाव से करो, और युद्ध आदि के द्वारा तुम दर्शन करना चाहो तो उसमें अभी तुम्हारे समय लगेगा। अगस्त ऋषि ने कहा, महाराज ये सनत कुमार की और रावण की आपस में बड़ी गुप्त बातें हुई। रावण ने ये बात विचार कही और विचार करके उनको उनको प्रणाम करके रवाना हो गया। तब से उसके मन में बैठ गई कि अब मुझे राम के साथ में बैर विरोध करना है। तब रावण ने यही देखा कि खूब अत्याचार करूं, खूब मैं लोगों को पीड़ित करूं, खूब कुछ करने से फिर वो अपने आप ही हमारे पास आएंगे। तो वो युद्ध की इच्छा से ही महाराज इस समय में वो लोगों को तकलीफ देता था। महाराज रावणो अतीव बुद्धिमान, रावण बहुत बुद्धिमान था, सीता का हरण आपसे मिलने के लिए किया था कि मैं सीता का हरण करूंगा तो जरूर राम सीता के लिए आएंगे और उनके हाथों से मैं मरूंगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। महाराज उसकी हार्दिक इच्छा थी कि त्वयात्मवद कांक्षया, आपके हाथ से मरने की, तो इसलिए सीता जी का हरण किया। और महाराज क्या बताएं, उसने सीता जी को सदा ही मातृबुद्धि से देखा, उसके मन में सीता के प्रति बड़ी माता की ही भावना थी। इमाम कथाम ये श्रुणियात, महाराज ये कथा तो बड़ी गुप्त है, इस कथा को जो सुनता है उसको आयुष्य आरोग्य और अनंत सौख्य मिला करता है। महादेव भगवान आगे कहने लगे कि ऐसे ही घूमते घूमते एक बार नारद जी महाराज मिल गए रावण को, ब्रह्मलोक से आए थे, नारद जी मिल गए। तो रावण ने बड़े विनय पूर्वक कहा कि महाराज ब्रूही में योद्धुम कुत्र संति महाबला, बड़े भुजाओं में खाद चलती है, 20-20 भुजाएं हैं, यद्यपि 20-20 भुजाओं को चाहे जब प्रकट कर लूं, इनमें 18 को चाहे जब लीन कर लूं, लेकिन खास बहुत चलती है, कोई लड़ने वाला मिलता ही नहीं है। जिससे भी मैं युद्ध करने के लिए जाऊं वो भी हाथ जोड़ के रह जाता है कि बाबा हमको तो माफ करो, हमको तो माफ करो। युद्धम इच्छामि बलिभिस्त्वं ज्ञातासि जगत्त्रयम्, अब तुम बताओ कि मैं किनके साथ युद्ध करूं जो मेरे से भी बलवान हो, उनके साथ युद्ध करूं। नारद जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के कहा कि देखो भाई श्वेत द्वीप के योद्धा है, उनके साथ युद्ध करो। श्वेत द्वीप में, हाँ श्वेत द्वीप के निवासी हैं कि वो वहां निवास करने वाले लोग कौन होते हैं महाराज? वो योद्धा इतने विलक्षण होते हैं रावण, जो भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाते हैं वो मरने के बाद वहां श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। बड़ा शरीर, सुडौल शरीर, बड़ी दिव्य उनकी कांति, और जो है बड़े विशाल शरीर वाले, बड़े सौम्य होते हैं और बल भी उनका सौम्य होता है। किन्हीं किन्हीं का बल संसार को कष्ट देने के लिए होता है, उनका बल संसार को आनंद देने के लिए होता है। जो लोग रात दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अथवा जो विष्णु भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, चाहे वो देवता हो चाहे असुर हो, सबसे अजय होते हुए भी जो विष्णु के द्वारा मारे जाते हैं, वो वहां श्वेत द्वीप वहां के लोक में जाते हैं और बड़े बलशाली होते हैं। अच्छा महाराज, नारद जी को तो विदा कर दिया, नारद जी अपने रास्ते चले गए। रावण ने देखा कि श्वेत द्वीप में कैसे बलशाली होते हैं, जरा देखते हैं, चलते हैं। तो अपने पुष्पक विमान में मंत्रियों को बैठा करके, चलो भाई ले लो अपने हाथ में शस्त्र, रावण से भी बढ़कर कोई बलवान हो सकता है क्या? और चलो अपने शस्त्र लेकर चलते हैं। पुष्पक विमान में बहुत से राक्षसों को लेकर गया। अब वो श्वेत द्वीप इतना चमकता था जैसे कोई हजारों लाखों सूर्य एक साथ चमकते हों। अब उनकी तरफ कोई एक सूर्य को भी नहीं देख सकता, लाखों सूर्य का प्रकाश कैसे दिखे? इस लाइट को हम 5-7 मिनट नहीं देख सकते, तो छोटे मोटे प्रभा को तो क्या देखेंगे। तो तत् प्रवाहत तेजस्कम पुष्पकम नाचलत तत है। वो पुष्पक विमान था जो सब जगह चलने वाला, जो ही श्वेत द्वीप की कांति फैली वो वहीं रुक गया, आगे गया नहीं। तो रावण उतर गया, रावण मंत्रियों से कहा चले, मंत्रियों ने कहा आगे चलने की हमारी जाने क्या बात, इच्छा ही नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती। अच्छा तुम भी यही रहो, मैं जाता हूं। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा था कि श्वेत द्वीप के चारों तरफ स्त्रियां पहरा दे रही थी। कई स्त्रियां, हे हे ये आया है, ये आया है, 20-20 भुजा वाला, 10 सिर वाला, ये रावण, ये श्वेत द्वीप में प्रवेश करेगा, इसकी सीमा को हम, इसकी सीमा में हम नहीं आने देंगे। ऐसे करके एक स्त्री ने यहां हाथ पकड़ लिया रावण का, और रावण खूब छुड़ाने लगा। दूसरी स्त्रियां उसकी मुंह की तरफ यूं करके हंसी उड़ाने लगी, ये रावण, ये बल वाला रावण, एक स्त्री के हाथ से तो हाथ छुड़ा नहीं सकता है, अपनी ताकत का अभिमान लेकर श्वेत द्वीप में आया है, हम लोगों की ताकत देखना चाहता है, अंदर योद्धा तो ऐसे बैठे हैं कि वो जो है तुम्हें दृष्टि से ही भस्म कर सकते हैं, कम से कम पहले हमसे हाथ तो छुड़ाओ। तुम कुतः कहां से आए, कोसी त्वम केन प्रेषित है, बताओ कहां से आए। ऐसे उसके पीछे पड़ी तो वो तो बहुत घबरा गया। तो वो जो है स्त्रियां खूब उसका तिरस्कार करने लगी, और जो है वो हंसती है और जो है खूब तिरस्कार करती है, दांत दिखाती है, खबरदार आइंदे फिर कभी आया तो छोड़ देते हैं, आज आइंदे कभी मत आना, ऐसे करके उसको छोड़ दिया। वो रावण वहां से नीचा मुंह करके चुपचाप आकर के और विचार कर लिया कि भाई अब तो मुझे विष्णु के हाथ से मरना ही मरना है। अरे विष्णु के हाथ से मरने का इतना बड़ा फल मिलता है, इतना बल, स्त्रियां जो है मुझे पकड़ ली और मैं छुड़ा नहीं सका, रावण जो कि मैं देवताओं को पराजित करने वाला हूं, तो भाई ऐसा बल चाहिए तो मुझे जो है विष्णु के धाम में ही जाना चाहिए, तो विष्णु के द्वारा मरने पर ही जा सकता हूं, मुझे वो काम करना चाहिए जिस काम से विष्णु भगवान कुपित होते हों। ऐसा विचार करके उसने महाराज सीता जी का हरण किया था। वो खूब अच्छी तरह से जानता था कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। वो अच्छी तरह से जानता था कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही आप मेरे यहां अवतार लिए हो, आप पृथ्वी पर अवतार लिए हो, मुझे मारने के लिए अवतार लिए, खूब अच्छी तरह से जानता था वो रावण। इति निश्चित्य, ऐसा ही निश्चय करके सीता जी का हरण किया और मातृवत पालया मां से, सीता जी का माता के समान पालन किया है। तत्त्वय कांक्षन वधम स्वकम, उसकी एक ही इच्छा थी कि राम आए और जहां मैं अभिमान करके लंका का राजा वहां पर मुझे मारे, ताकि मेरे भाई बंधु ये सब भी मरते हुए भगवान के धाम में चले जाए। हे राम, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, आप कितने विलक्षण हो महाराज, रावण आदि का भी आपने कल्याण सोचा है, पूरे वंश का, सारे राक्षस कुल का आपने कल्याण किया है। हे प्रभु, आप तो मनुष्य रूप से केवल आकृति से ही दिखते हो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, अब आप हमको आज्ञा दीजिए, हम अपने स्थान पर जाते हैं। सब ऋषि मुनि वहां से अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर भगवान ने पुष्पक विमान से भी कह दिया, पुष्पक विमान जी देखो शायद वो चेतन है, वो अब तुम जो है कुबेर जी के पास चले जाओ, कुबेर जी के पास जाओ और कुबेर के पास ही रहो। तो वो कुबेर के पास चला गया तो कुबेर ने कहा देख वही पुष्पक विमान, पहले हमको तुम मिले थे, ब्रह्मा जी ने हमको दिया था तुम्हें, लेकिन फिर रावण ने तुमको जीत लिया तो तुम रावण के पास चले गए, अब रावण को राम जी ने मार दिया तो तुम राम जी के हो गए, मेरे पास तो हम तुमको नहीं रख सकते, अतः तुम राघवम नित्यम, अब तुम राम जी के पास ही रहो, हमारे पास नहीं। तब वो राम जी के पास आया, राम जी ने कहा कि अच्छा देखो यहाँ हमारे यहाँ अयोध्या में रहेंगे तो लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, तुम जाओ बैकुंठ में जाओ, तुम बैकुंठ में ही रहो, हम जब बैकुंठ में आएंगे जब तुम्हारा काम कर लेंगे। तब जो है पुष्पक विमान बैकुंठ में चला गया, भगवान ने कहा एक बात है भाई, कभी हमको जरूरत पड़े हम याद करें तो आ जाना, और भेज दें हो तो वहां पर चले जाना। इस प्रकार से भगवान वहां अयोध्या में रहने लगे। राम राघव राम राघव राम राघव पाई मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष